الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا؟ اس رسالے کا مواد ملفوظات امیر اہل سنت قسط 106 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا پڑھ یا سن لے، اسے اپنی رضا کے لیے مصیبتوں پر صبر اور بہت زیادہ اجر عطا کر، اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا؟ سوال: صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ کیا اپنی پریشانی بھی کسی کو نہیں بتا سکتے؟ جواب: غالباً صبر کا معنی اردو میں برداشت کرنا ہی ہوتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اپنی مصیبتیں دوسروں کو بتانا، اس میں بعض اوقات بے صبری سامنے آ جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی بزرگ امام مسجد یا عالم دین کو اپنی مصیبت اس لیے بتا رہا ہے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کریں، یا کسی ڈاکٹر کو بتا رہا ہے تاکہ وہ اس کی بیماری کا علاج کرے، اور اتنا بتا رہا ہے جتنا بتانے کی حاجت ہے، تو یہ بے صبری میں نہیں آئے گا اور ثواب بھی ضائع نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے بھی بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ بخار ہوا ہے تو کہیں گے کہ شدید بخار ہے، درد ہو رہا ہے تو کہیں گے کہ شدید درد ہے۔ اگر شدید ہے تو شدید کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ دوا خانے جا رہا ہوں یا امی کو دوا خانے لے جا رہا ہوں، اب کہتے ہیں کہ امی کو ہسپتال لے جا رہا ہوں، کیونکہ ہسپتال کا نام بھاری ہے۔ اس لیے ہمدردی لینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی جگہ کلینک بھی بولا جا سکتا ہے۔ ہسپتال کا نام سن کر آدمی تھوڑا چونکتا ہے، اس لیے اگر کبھی ہسپتال جا بھی رہے ہوں تو یہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ صرف چیک اپ کے لیے ہسپتال جا رہا ہوں۔ اپنی مصیبت ضرورتاً بیان کر سکتے ہیں، بڑھا چڑھا کر اور مبالغے کے ساتھ بیان نہ کی جائے۔ بعض لوگ ویسے نارمل ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کے دیکھتے ہی بیمار جیسا منہ بنا لیتے ہیں اور بیماری والا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ میں ایک جگہ کسی کی عیادت کے لیے گیا، وہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی لیٹ گیا اور چادر تان لی۔ اب اس کا نصیب کہ میں اسے دیکھ چکا تھا۔ بہرحال میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا کہ یہ ڈرامہ چھوڑو تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈرامہ ہی تھا کہ کوئی عیادت کرنے آئے تو اسے بیمار بن کر دکھاؤ تاکہ وہ خوب ہمدردیاں کرے۔ جو اپنے بیمار ہونے کا جھوٹا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں وعید موجود ہے کہ وہ جیسا اظہار کر رہا ہے کہیں ویسا ہی بیمار نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی کے سامنے اظہار کرنا ہے تو اتنا ہی کریں جتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ ہر طرح کی بیماری، بلکہ معیوب بیماریوں کا بھی اظہار کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ پیٹ میں بھی درد ہوتا تو بتاتے ہوئے شرماتے تھے۔ ہاں، ضرورتاً ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن اسے بتانے میں بھی اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ تھوڑا پیٹ کا مسئلہ ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بغل میں پھوڑا ہوا تھا۔ کسی نے آزمانے کے لیے کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں، پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھ کے اندر کی طرف پھوڑا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ لفظ بغل بولنے سے بھی شرمائے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید بغل اٹھا کر دکھا بھی دیتا۔ ہمارے یہاں تو جہاں جہاں تکلیف ہے بعض اوقات وہاں کا پورا نقشہ کھینچ کر بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عثمان با حیا کا صدقہ نصیب فرمائے اور شرم و حیا کی دولت عطا کرے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے با حیا تھے کہ بند کمرے میں بھی لباس تبدیل کرتے ہوئے شرم کے مارے سکڑ جاتے تھے۔ بلا ضرورت تکلیف کا اظہار نہ کیجیے۔ سوال، بعض اوقات انسان جب کسی کے سامنے خوب گلے شکوے کرتا ہے اور سامنے والا نرمی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبر کیجیے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بس جی صبر ہی تو کر رہے ہیں، ایسوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب، حدیث پاک میں ہے کہ صبر تو اول صدمے میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، اس لیے جیسے ہی تکلیف آئے بندہ بولے نہیں، بس چپ ہو جائے اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی ایسا اظہار نہ کرے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ اسے کوئی تکلیف ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھلے چپ رہے لیکن منہ بگاڑے، آہ اوہ کرے، تو ظاہر ہے کہ سامنے والا پوچھے گا کہ کیا ہوا۔ ایسے میں بندہ بولے کہ خود تھوڑی بتایا ہے، اس نے پوچھا ہے تو بتایا ہے، حالانکہ اپنے جسم یا چہرے پر بورڈ چڑھا رکھا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ کیا تکلیف ہے۔ جب بھی اس نے آ کر پوچھا ہے، یوں طرح طرح کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بلا ضرورت کسی کے سامنے تکلیف کا اظہار کرنے سے صبر کی منزل ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ اگر کسی کا موبائل چھن جائے یا جیب کٹ جائے تو وہ مسکراتے ہوئے چپ چاپ مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بولے گا کہ میرا موبائل گن پوائنٹ پر لے لیا، مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، جھگڑا کرتا تو فائر کر دیتے۔ یوں بندہ ہمدردیاں حاصل کرتا ہے، بعض اوقات مصیبت سن کر بھی سامنے والے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور بندے کی ناک کٹ جاتی ہے، سامنے والا صرف اچھا کہہ کر نکل جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو کیا بولنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور دعا مانگی جائے۔ دعا مانگنا بے صبری نہیں ہے، گھر میں چوری ہو جائے یا آگ لگ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا بچہ اور ماں باپ بیمار ہو جائیں، تو بلا ضرورت کسی کو نہ بولیں، بولنا پڑے تو ضرورتاً بولیں۔ 100 لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تو 100 کو بتائیں، ورنہ ایک کو بھی نہیں۔ مثلاً گھر میں کسی کا انتقال ہونا ایک مصیبت ہے، بلکہ بندے پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اب ایسے میں بندہ لوگوں کو اس مصیبت کا بتائے گا، کیونکہ وہ جمع ہوں گے اور جنازہ پڑھیں گے، یہ صورت ٹھیک ہے۔ اس میں بھی رونے دھونے اور ایسے انداز سے غم ظاہر کرنے سے بچنا ہوگا جسے بے صبری کہا جائے۔ آنسو بہنا بے صبری نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بخود آ رہے ہیں۔ ایسی کیفیت نہ بنائے جس سے خوب غم کا اظہار ہو، جیسے عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اکیلی ہوں گی تو چپ ہوں گی، لیکن جیسے ہی کوئی ملنے یا تعزیت کرنے آئے گی تو رونا شروع کر دیں گی اور بتائیں گی کہ یہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کے اثرات کچھ مردوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، یہ بے صبری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں صبر عطا فرمائے، صبر جنت کا خزانہ ہے، کاش ہم کو نصیب ہو جائے۔ نفس و شیطان صبر کرنے نہیں دیتے، کیونکہ جنت کا خزانہ جب اتنی آسانی سے مل رہا ہوگا تو نفس و شیطان کہاں حاصل کرنے دیں گے۔ ہم اللہ پاک سے توفیق خیر و بھلائی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو واقعی صبر عطا کر دے، اور صبر کرنے والے امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا سیلفی لیتے ہوئے مرنا خودکشی ہے؟ سوال، جو لوگ بلند مقامات سے سیلفی لیتے ہوئے گر کر مر جاتے ہیں، क्या उन पर खुदकुशी का हुक्म लगेगा? जवाब, ये लोग जानबूझकर अपनी जान को ख़त्म नहीं करते, इसलिए इन पर खुदकुशी का हुक्म नहीं लगेगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ऐसा करना इनके लिए शरअन दुरुस्त ना था। कुरान करीम में है, वला तुल्कु बिअईदीकुम इला तहलुका, पारा 2 सूरह बकरा आयत 195, तर्जमाए कंजुल ईमान, और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो। ये लोग अपनी बहादुरी बल्कि हमाकत के चक्कर में आकर सिर्फ ये दिखावा करने के लिए कि मैं बड़ा हिम्मत वाला हूँ, देखो मैंने कैसी सेल्फी बनाई है, अपनी जान खतरे में डाल देते हैं और बाज़ औक़ात मौत के मुंह में चले जाते हैं। कोई ट्रेन से कुचला जाता है तो कोई छत या किसी इमारत से गिर पड़ता है। कुछ अरसे पहले हिंद की एक वीडियो वायरल यानी आम हुई थी, जिसमें एक मुसलमान नौजवान शेर के साथ सेल्फी बनाते हुए ऊंची दीवार से शेर के पिंजरे में गिर गया था और शेर उसे घसीटता हुआ ले गया था, लेकिन इस दौरान उस नौजवान का हार्ट फेल हो चुका था। अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमाए और गरी के रहमत करे। आमीन बिजाह नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सेल्फी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अलबत्ता बाज़ औक़ात ख़तरनाक नहीं भी होती, लेकिन इसकी वजह से लोगों को बस एक मसरूफियत मिल गई है। मौत अगर लिखी हो तो किसी बहाने भी आ जाती है और इंसान को समझ नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इंसान कोई ऐसी हरकत कर गुज़रता है और फिर मौत के मुंह में चला जाता है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। तकदीर में सब लिखा है तो मेहनत क्यों? सवाल, अगर तकदीर में हर चीज़ लिख दी गई है तो हमें मेहनत करना क्यों ज़रूरी है? जवाब, अगर तकदीर में सख्त सर्दी से ठिठर कर मरना लिख दिया गया है तो गर्म कपड़े क्यों पहनते हो? अगर किस्मत में चोरी लिख दी गई है तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? नोट और सोने के जेवरात छुपाने की क्या ज़रूरत है? दरवाज़ा खुला रखो, सामान निकाल कर गली में छोड़ दो। तकदीर में लिखा होगा तो चोरी हो जाएगा, वरना चोरी नहीं होगा, बल्कि किसी को नज़र भी नहीं आएगा। सारी बातों में आप तदबीर करते हैं, तकदीर पर नहीं छोड़ते, लेकिन बाज़ मामलात में तकदीर पर छोड़ देते हैं। जैसे बाज़ बेबाक किस्म के लोग बोलते हैं कि यार अगर तकदीर में जन्नत होगी तो मिल जाएगी, वर्रा दोजख मिल जाएगी, माअल्लाह। तकदीर के मामले में बहस करने से हदीस पाक में हज़रत सिद्दीक अकबर और हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाहु अन्हुमा को भी मना फरमा दिया गया था, इसलिए तकदीर के मुतालिक बहस ना की जाए। हमारा काम बस इतना है कि वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाही तआला, यानी बुरी और भली तकदीर अल्लाह की तरफ से है, हमें अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। तकदीर में बास चीज़ें मुअल्लक भी रहती हैं, मसलन स्कूटर पर जाएगा तो एक्सीडेंट होगा, स्कूटर पर नहीं जाएगा तो नहीं होगा, ये तकदीर मुअल्लक कहलाती है। इसमें भी अल्लाह पाक को मालूम है कि ये स्कूटर पर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन उसके मालूम होने ने इसे स्कूटर पर जाने या ना जाने के लिए मजबूर नहीं किया। मसलन दवा की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, कंपनी वालों को तजर्बे से पता होता है कि ये दवा कब तक कार आमद रहेगी, लेकिन उनके एक्सपायरी डेट लिखने से वो दवा एक्सपायर होने पर मजबूर नहीं होती। अगर कंपनी वाले नहीं भी लिखते तब भी दवा उसी तारीख को एक्सपायर हो जाती, लेकिन लिखने और ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह तकदीर में भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक ने लिख दिया है इसलिए बंदे को करना पड़ रहा है, बल्कि बंदा जैसा करने वाला था अल्लाह पाक ने वैसा ही अपने इल्म से लिख दिया। अल्लाह पाक को सब मालूम है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। खौफ दूर करने का रूहानी इलाज। सवाल, रात को अचानक आँख खुलने के बाद बहुत डर लगता है, इस सूरत में क्या किया जाए? जवाब, अगर ऐसा हो तो या रऊफू पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह खौफ दूर हो जाएगा। सच्चाई में अज़मत है। सवाल, सच के मुतालिक कुछ इरशाद फरमा दीजिए, लोग सच को अहमियत नहीं देते। जवाब, एक जुमला है, सांच को आँच नहीं। जहालत इतनी छा गई है कि अब लोग बोलते हैं कि झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे तो फलां फलां काम नहीं होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। सच्चाई की ज़िंदगी गुजारने वाले गुजारते हैं। सच्चे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, जिनके मज़ारात पर आज चरागा हो रहा है, जिनका उर्स मनाया जा रहा है और ईसाले सवाब किया जा रहा है, उन्होंने दुनिया में सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारी है। यही वजह है कि आज उनकी मौज लगी हुई है। कुरान करीम में हुक्म है, वकूनु मअस्सादिकीन, पारा 11 सूरह तौबा आयत 119, तर्जमाए कंजुल ईमान, और सच्चों के साथ हो। ये बड़ी गलत सोच है कि सच्चाई का ज़माना नहीं है या झूठ के बगैर गुजारा नहीं है। दरअसल जहन ख़राब हो चुका है, इसलिए ऐसी बातें की जाती हैं, वरना हकीकत ये है कि सच्चाई में अज़मत है, झूठ में कोई अज़मत नहीं है बल्कि तबाही और बर्बादी है। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। अहादीस मुबारका में भी सच के फ़ज़ाइल मौजूद हैं। कारोबार में झूठ बोलकर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नफ़ा हो गया है, लेकिन हो सकता है कि यही आने वाला नफ़ा सुकून छीन ले। आप अगर मालदारों के अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको सुखी लोग कम मिलेंगे। ये अच्छे कपड़े पहनकर आपके सामने बैठे होते हैं, मगर अंदरूनी तौर पर एक तादाद टूटी हुई होती है। किसी को कोई टेंशन तो किसी को कोई। ज़रूरी नहीं कि ये सब झूठ बोलने की वजह से ही हुआ हो। कहने का मकसद ये है कि इस दौर में झूठ बोले बगैर ज़्यादा दौलत जमा कर लेना बड़ा दुश्वार है। मज़ीद ये कि तिजारत के मसाइल भी पता नहीं होते, यूं भी गुनाहों में पड़ जाते हैं। अगर झूठ बोलकर माल बिक भी गया तो उसमें बरकत और भलाई नहीं होगी। कभी बीमारी में चले जाएंगे या कभी डाकू उठाकर ले जाएंगे। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माल हराम का था। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, झूठ बोलकर ज़्यादा माल आ भी जाए तो उसमें बरकत और सुकून नहीं होता। जो गरीब आदमी साबिर व शाकिर होगा वो आपको पुरसकून मिलेगा, उसकी दुनिया भी पुरसकून होती है, क्योंकि उसे फुटपाथ पर भी नींद आ जाती है और उसे अगवा होने या डकैती होने का भी खौफ नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना माल ही नहीं होता जिसकी वजह से उसे ख़तरा हो। और ऐसा गरीब हदीस पाक के मुताबिक मालदार लोगों से 500 साल पहले जन्नत में भी चला जाएगा। मालदार इसलिए रुका रहेगा कि उसने अपने माल का हिसाब देना होगा, और अगर माल हराम का होगा तो फिर अदाब भी होगा। जो गरीब आदमी गिले शिकवे करता है या दूसरों के माल पर नज़र रखता है, उसके लिए ये फजीलत नहीं है। बहरहाल, झूठ बोलकर वक्ती तौर पर नजात मिल भी जाए तब भी झूठे शख्स का एतिमाद ख़त्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल जाता है कि इसकी ज़बान का ठिकाना नहीं है, और फिर वो लोगों में बदनाम हो जाता है। बाद में सच भी बोलता है तो लोग उसकी बात को झूठ समझते हैं। जैसा कि एक चरवाहा बकरियां चराता था, एक बार उसे मस्ती सूझी और उसने जंगल में एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चीखना शुरू कर दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया। करीबी आबादी के लोग डंडे भाले और जो हाथ आया लेकर दौड़े, लेकिन जब पहुंचे तो चरवाहा खड़ा हंस रहा था। बात आई गई हो गई, एक बार सचमुच शेर आ गया। चरवाहा फिर टीले पर चढ़ा और चीखने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया। तो लोगों ने सुना तो बोला कि ये झूठ बोल रहा है, इसका क्या भरोसा। बाद में जब लोगों का वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि शेर ने उसको चीर फाड़ दिया था और उसकी बकरियाँ भी भाग गई थीं, या उसकी बकरियों को शेर ने खा लिया था और चरवाहा जिंदा था। उसने लोगों से कहा, तुम लोग क्यों नहीं आए? लोगों ने कहा, पहले तुमने झूठ बोला था, इसलिए हम समझे कि अब भी झूठ बोल रहे हो। यूं उसके झूठ की वजह से उसे नुकसान हुआ। झूठ में दोनों जहां का नुकसान है और इसका एक से एक अदाब है। जान का सदका किस चीज़ से देना बेहतर है? सवाल। लोग मुख्तलिफ चीज़ों का सदका देते हैं, अगर जान का सदका देना हो तो किस चीज़ से देना बेहतर है? जवाब। जान का सदका देना हो तो जानवर की जान का सदका दिया जाए। मसलन कोई सफ़र पर जा रहा है तो उसके ज़िंदा सलामत लौट कर आने के लिए, या कोई मरीज है तो उसके तंदुरुस्त होने के लिए, कोई मुर्गी वगैरह हलाल जानवर ज़िबह कर दिया जाए या किसी को ज़िंदा दे दिया जाए कि उसे ज़िबह कर देना। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर ये है कि हो सकता है जिसे ज़िंदा दें वो उसे ज़िबह करने के बजाय आगे बेच दे। मसलन किसी राह चलते फ़कीर को मुर्गी दे दी, अब वो पकाए कहाँ, इसलिए वो जाकर बेच देगा। यही हाल बकरों का भी होता है, इसलिए खुद अपने सामने काटें या किसी काबिल एतिमाद आदमी को दें जो बोले कि हम काट देंगे। ये एक बेहतर सूरत बताई है। बाकी अगर किसी को ज़िंदा दिया और उसने आगे बेच दिया तो ये जायज़ है और खैरात कहलाएगी। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि नफली सदक़े के लिए लफ्ज़ खैरात बोलूँ। अरबी में खैरात खैर की जमा है, उर्दू में राह खुदा में कोई चीज़ देना खैरात कहलाता है। सदका का माना बहुत वसी है, मुसलमान के सामने मुस्कुराना भी सदका है। रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़, मसलन पत्थर और कांटा वगैरह हटा देना भी सदका है। दीनी तबके का दुनियावी तबके पर रश्क करना कैसा? सवाल। बाज़ औक़ात दीनी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दुनियावी लोगों का रख रखाव देख कर रश्क आता है, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? जवाब। अगर कोई आलिम या हाफिज साहिब ये सोचें कि मैंने इल्म हासिल किया है, इसके इतने इतने फ़ज़ाइल और मर्तबे हैं, लेकिन मेरी इमामत है और तनख्वाह इतनी सी है, जबकि फ़लाँ शख्स सूदी इदारे में काम करता है, ना उसकी दाढ़ी है, ना लिबास इस्लामी है और न ही उसके पास इल्म दीन है, उसकी तो इतनी सारी तनख्वाह है, तो उन्हें ये कहा जाए कि ठीक है, आपको बड़ी सर्विस दिला देते हैं, मगर शर्त यह है कि आपको इल्म दीन भुला दिया जाएगा, हिफ्ज़ कुरान भी ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर आप हाफिज साहिब नहीं रहेंगे, आप हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुल आलिया नहीं रहेंगे बल्कि मिस्टर कहलाएंगे, क्या आपको मंजूर है? जाहिर है ये सब सुनकर इनकार कर देगा कि नहीं, ये नादानी है, इल्म दीन और हिफ्ज़ कुरान की कदर है, असल मालदार आप हैं, उसके पास जो दुनियावी डिग्रियां हैं वो कब्र में काम नहीं आएंगी, जबकि आपके इल्म दीन और हिफ्ज़ कुरान की डिग्री कब्र व आखरत में काम आएगी। आप अपना गंदम का छोटा दाना देखकर ये बात कर रहे हैं, हालांकि सामने जो खूबसूरती नज़र आ रही है वो बुलबुला है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो फट जाएगा, जबकि आपका गंदम का इतना सा दाना आपकी जान और ईमान बचाएगा। ये गंदम का दाना आपका सरमाया है, अगर ये भी ना हो तो बाज़ औक़ात फ़क्र इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। काम पूरा होते होते क्यों रह जाता है? सवाल। काम पूरा होते होते रह जाने की क्या वजह होती है? जवाब। असल वजह अल्लाह पाक जाने। बारहा ऐसा होता है कि काम होते होते इसलिए रह जाता है कि वो काम ना होने में उसकी भलाई होती है। मसलन स्कूटर बनने के लिए दी थी और बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना था। जब बनाने वाले के पास गए तो उसने बोला कि कल मिलेगी। एक पुर्जा मुझे मिला नहीं, कल बड़ी मार्केट जाऊंगा, वहां से लाऊंगा। अब बंदा पेचो ताब खाता हुआ और बड़बड़ाता हुआ बस में बैठकर चला गया। अब इसमें बेहतरी की सूरत यह है कि हो सकता है तकदीर मुअल्लक ये हो कि अगर ये स्कूटर पर बैठकर जाएगा तो ट्रक टक्कर मारेगा, उसका सर फुटपाथ से टकराएगा और ये कोमे में चला जाएगा या मर जाएगा। ये समझाने के लिए एक मिसाल है कि हमारे हक में क्या बेहतर है हमें नहीं पता होता। इसलिए अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें। अल्लाह पाक जो करता है सही करता है। इस हवाले से मकतबतुल मदीना की किताब उयूनुल हिकायत में गधे, मुर्ग और कुत्ते की एक तवील हिकायत सुनिए। एक नेक शख्स किसी जंगल में रहा करता था। उस मर्द सालिह के पास एक मुर्ग, एक गधा और एक कुत्ता था। मुर्ग सुबह सवेरे उसे नमाज के लिए जगाता, गधे पर वो पानी और दीगर सामान लादा करता और कुत्ता उसके मालो मता और दीगर चीज़ों की रखवाली करता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके मुर्ग को एक लोमड़ी खा गई। जब उस नेक शख्स को मालूम हुआ तो उसने कहा मेरे लिए इसमें बेहतरी होगी, लेकिन घर वाले इससे बहुत परेशान हुए कि हमारा नुकसान हो गया। चंद दिन के बाद एक भेड़िया आया और उसने उनके गधे को चीर फाड़ डाला। जब घर वालों को इसकी इतला मिली तो वो बहुत गमगीन हुए और आहोजारी करने लगे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उस नेक शख्स ने कोई बेसब्री वाले जुमले ज़बान से ना निकाले, बल्कि कहा कि इस गधे के मर जाने ही में हमारी आफियत होगी। फिर कुछ अरसे के बाद कुत्ते को भी बीमारी ने आ लिया और वो भी मर गया। लेकिन उस साबिर व शाकिर शख्स ने फिर भी बेसब्री और नाशुक्री का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि वही अल्फाज दोहराए कि हमारे लिए इसके हलाक हो जाने में ही आफियत होगी। वक्त गुज़रता रहा। कुछ दिनों के बाद दुश्मनों ने रात को उस जंगल पर आबादी पर हमला किया और उन तमाम लोगों को पकड़ कर ले गए जो उस जंगल में रहते थे। उन सब की कैद का सबब ये बना कि उनके पास जानवर वगैरह मौजूद थे जिनकी आवाज़ सुनकर दुश्मन मुतवज्जे हो गया और दुश्मनों ने जानवरों की आवाज़ से उनकी रिहाइश की जगह मालूम कर ली। फिर उन सब को उनके मालो असबाब समेत कैद करके ले गए, लेकिन वो नेक शख्स और उसका साजो सामान सब बिल्कुल महफूज रहा, क्योंकि उसके पास कोई जानवर ही ना था जिसकी आवाज़ सुनकर दुश्मन उसके घर की तरफ आते। अब उस नेक मर्द का यकीन इस बात पर मज़ीद पुख्ता हो गया कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर कोई काम नहीं होता तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हो सकता है उस काम के ना होने में ही हिकमत हो। मसलन अगर हम दौलतमंद नहीं बन रहे तो हो सकता है ये हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर दौलतमंद बन जाएं तो ना शुक्रे बंदे बन जाएं कि माल हो तो गुनाहों के असबाब बहुत मिल जाते हैं। अगर माल नहीं होगा तो गुनाहों वाली चीज़ें खरीदना भी मुश्किल होगा और यूं आदमी गुनाहों से बच जाएगा। ये भी हो सकता है कि दौलतमंद बनने के बाद गरीबों को हकारत से देखने लगें और तकब्बुर में पड़ जाएं। इसलिए अगर माल नहीं है तो अच्छा है कि बंदा तकब्बुर की मुसीबत से बचा हुआ है। हमारे पास जो भी कमी है उस कमी पर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि हो सकता है उस कमी की वजह से हम आजमाइश से महफूज हों। हुस्न भी एक आजमाइश होती है। अगर हुस्न ना हो तो बाज़ औक़ात आदमी कुड़ता है और ऐसा औरतों में ज़्यादा होता होगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बाज़ लड़कियां अपने हुस्न की वजह से अगवा हो जाती हैं या मुसीबत में पड़ जाती हैं। इसलिए अगर किसी के पास हुस्न नहीं है तो ये भी उसके लिए आफियत की सूरत हो सकती है। अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा है बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरी हिकमत मैं नहीं समझ सकता, बस ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफाता फिद दुनिया वल आखिरा, यानी ए अल्लाह मैं दुनिया और आखिरत में तुझसे आफियत यानी सलामती का सवाल करता हूँ। फजाइले आफात और 20 रूहानी इलाज, 3 फरामीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, मुसलमान को जो भी तकलीफ़ बीमारी दुख परेशानी अजियत और गम पहुँचे, यहाँ तक के अगर उसको कांटा भी चुभ जाए, अल्लाह पाक उनके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। नंबर 2, क़यामत के दिन जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो आफियत के साथ रहने वाले तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से काटी जाती। नंबर 3, जो एक रात बीमार रहा, सब्र किया और अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहा, तो वो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। जे सोहना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले पावां। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मु साइब के पास तशरीफ ले गए, फरमाया तुझे क्या हुआ है जो कांप रही है? अर्ज की बुखार है, अल्लाह पाक इसमें बरकत ना करे। फरमाया बुखार को बुरा ना कहे कि वो आदमी की खताओं को इस तरह दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को। हजरत अता बिन अबू रबाह रदी अल्लाहु अन फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा ने मुझसे फरमाया क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत में से कोई औरत ना दिखाऊं? मैंने अर्ज़ की ज़रूर दिखाइए। फरमाया ये हबशी औरत, जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो इसने अर्ज़ की मुझे मिर्गी है जिसकी वजह से मेरा सितर यानी पर्दा खुल जाता है, लिहाजा अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ कीजिए। इरशाद हुआ अगर तुम चाहो तो सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर चाहो तो मैं अल्लाह पाक से तुम्हारे लिए दुआ करूं कि वो तुम्हें आफियत अता फरमा दे। तो उसने अर्ज़ की मैं सब्र करूंगी, फिर अर्ज़ की मेरा पर्दा खुल जाता है, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि मेरा पर्दा ना खुला करे। फिर आपने उसके लिए दुआ फरमाई। हज़रत दहाक रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है, जो हर 40 रात में एक मर्तबा भी आफत या फिक्र परेशानी में मुबतला ना हो, उसके लिए अल्लाह पाक के यहाँ कोई भलाई नहीं। मेरे बीमार बख्त बेदार, देखा आपने बीमारी और आफत कितनी बड़ी नेमत है कि इसकी बरकत से अल्लाह पाक बंदे के गुनाह मिटाता और दर्जात बढ़ाता है। बेशक मर्ज हो या जख्म, जहनी टेंशन हो या घबराहट, नींद कम आती हो या नफसियाती अमराज, औलाद के सबब गम हो या बे औलादी का सदमा, रोजी की तंगी हो या कर्जे का बहुत बड़ा बोझ, अलगरज मुसलमान को मुसीबतों पर सवाब मिलता है। हर सूरत में सब्र से काम लीजिए कि बेसब्री से तकलीफ तो जाती नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है, और वो भी इतना बड़ा नुकसान यानी सब्र के ज़रिए हाथ आने वाला सवाब ही ज़ाया हो जाता है। याद रखिए सबसे ख़तरनाक बीमारी कुफ्र की बीमारी है, और गुनाहों की बीमारी भी सख्त तशवीशनाक है। आफत व मुसीबत और बीमारी और परेशानी लोगों से छुपाना कारे सवाब है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे पोशीदा रखा और लोगों से शिकायत ना की, तो अल्लाह पाक पर हक है कि उसकी मगफिरत फरमा दे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा दरिया के किनारे पर एक बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, उनके मुबारक पाँव को चीते ने काट लिया था और ज़ख्म बेहद ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया था। لوگ جمع تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے، مگر وہ فرما رہے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں، یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے جسمانی مرض ملا، اگر میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو کیا کرتا؟ نمبر ون، روزی کے لیے یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف، 11 بار بعد نماز عشاء، قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو۔ اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، انشاءاللہ روزی کی تنگی دور ہوگی۔ نمبر ٹو، یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ نمبر تھری، 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ بیماری تندرستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ نمبر 4، چوری سے حفاظت یا جلیلو اے بزرگی والے 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، شادی کے لیے جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ نمبر 6، یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ نمبر 7، اولاد نرینہ کے لیے یا متکبرو 10 بار زوجہ سے ملاب سے قبل پڑھ لینے والا نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ نمبر 8، حاملہ شہادت کی انگلی اپنی ناف کے گرد گھماتے ہوئے یا متینو 70 بار پڑھے، یہ عمل 40 دن تک جاری رکھے، اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا عنایت ہوگا۔ اس عمل میں ہر مرض کا علاج ہے، کوئی سا بھی مریض یہ عمل کرے تو انشاءاللہ شفا پائے۔ ناف سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں، کپڑے کے اوپر ہی سے یہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 9، حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شوہر اس طرح کہے، ان کان ذکرن فقد سمیتہ محمدا، ترجمہ، اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر کہتے وقت عربی عبارت کے معنی ذہن میں ہوں تو ترجمے کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ترجمے کے الفاظ بھی کہہ لیں۔ نمبر 10، دشمن سے حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت پڑھنے سے انشاءاللہ دشمن سے حفاظت ہوگی۔ 11، گم شدہ انسان وغیرہ ملنے اور ہر حاجت کے لیے اللہ پاک کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، اس دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ گم شدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ انشاءاللہ مل جائیں گے، بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ نمبر 12، असरात का रूहानी इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह 41 41 बार लिख या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े या रेगजीन या कपड़े में सीकर बाजू में बांधने या गले में पहन लेने से इंशा अल्लाह असरात दूर होंगे। 13 जादू का रूहानी इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह 101 101 बार पढ़कर सहर जदा यानी जिस पर जादू किया गया हो उस पर दम कर दिया जाए या यही लिख या लिखवा कर धोकर पिला दिया जाए तो इंशा अल्लाह सहर यानी जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। 14 अगर नींद ना आती हो तो अगर नींद ना आती हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह 11 11 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर दीजिए इंशा अल्लाह नींद आ जाएगी। 15 कैंसर का रूहानी इलाज अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी और दरमियान में सूरह मरियम पढ़कर पानी पर दम कीजिए ज़रूरतन दूसरा पानी मिला मरीज वही पानी सारा दिन पिए ये अमल 40 दिन तक बिला नागा करते रहिए इंशा अल्लाह शिफा हासिल होगी। दूसरा भी पढ़कर दम करके मरीज को पिला सकता है। 16 बुखार का रूहानी इलाज या गफूरू कागज़ पर 3 बार लिख या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े या रेगजीन या कपड़े में सीकर गले में डाल या बाजू पर बांध दीजिए इंशा अल्लाह हर किस्म के बुखार से नजात मिलेगी। 17 हेपाटाइटिस का रूहानी इलाज हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कुरैश 21 21 बार अव्वल आखिर 11 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ या पढ़वा कर आब जमज़म शरीफ या उस पानी में जिसके अंदर आब जमज़म के चंद कतरे शामिल हों दम कीजिए और रोज़ाना सुबह दोपहर और शाम पी लीजिए इंशा अल्लाह 40-40 रोज़ के अंदर अंदर शिफायाब हो जाएंगे। सिर्फ एक बार दम किया हुआ पानी काफ़ी है हस्ब ज़रूरत मज़ीद पानी मिला दीजिए। 18 पित्ते और मसाने की पथरी का रूहानी इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह 46 46 बार सादा कागज़ पर लिखकर पानी में धोकर पीने से पित्ते और मसाने की पथरी इंशा अल्लाह रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। मुद्दत इलाज ता हुसूल शिफा। 19 दिल और सीने की बीमारियों का रूहानी इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह 75 75 बार पढ़कर दिल में सुराख वाले बच्चे नीज घबराहट दिल और सीने के तमाम मरीजों के सीने पर दम करना बिफजलिही ताला मुफीद है। 20 हर तरह के मरीज का रूहानी इलाज या मुईदू दाइमी मरीज हर वक्त पढ़ता रहे अल्लाह पाक सेहत इनायत फरमाएगा। परेशानियों को दूर करने का अमल हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह अन फरमाते हैं कि जिसने सुबह शाम 7-7 बार पढ़ा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम तर्जमा मुझे अल्लाह काफ़ी है उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं मैं उसी पर तवक्कुल करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का रब है अल्लाह पाक उसकी तमाम हकीकी और ख्याली परेशानियों में किफ़ायत करेगा।